ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। देश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा संगठनों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज श्रीनिवासपुरी क्षेत्र में नालों का निरीक्षण किया और दिल्ली पुलिस ने आरके पुरम क्षेत्र में पिछले 3 साल से रह रहे एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। आज देश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर सहित राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है।
आज राष्ट्रीय राजधानी में राजकोरी गांव, न्यू सीमापुरी, जैतपुर और करोल बाग समेत कई विभिन्न जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी और हनुमान जयंती के कई समारोह में भाग लिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा,
आज यहाँ पर हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बाबा हनुमान जो प्रभु राम के ऐसे भक्त थे, सदैव उनके काम के लिए तत्पर रहते थे, हर क्षण सेवा का भाव रखते थे, मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का अंश लेके आना पड़ेगा कि देश को प्रभु राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त, अपनी इस मातृभूमि के निमित्त हम सब भी अपना सेवा और समर्पण दे पाए।
वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस अवसर पर भंडारा वितरित किया। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान हनुमान सेवा, शक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा को भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
हनुमान जयंती के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में और वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु जय बजरंग बली का उद्घोष कर रहे हैं और हनुमान चालीसा तथा सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। अयोध्या में लोग राम मंदिर के दर्शन से पूर्व सरयू में स्नान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट में कहा कि संकटमोचन भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सभी लोग जीवन में स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक दारीपल्ली रामैया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दारीपल्ली रामैया ने लाखों पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दारीपल्ली रामैया का काम देश के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लखिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने उन्हें एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई पीढ़ियों के नर्तकों को तैयार किया और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हरीश भाई नायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, सेवा गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यों में श्री नायक का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोइला बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुथांडू पिरापू की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कामना की कि ये पर्व लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति के संरक्षण और देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संदेश भी देते हैं। पंजाब में आगामी वैशाखी त्योहार के मद्देनजर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर नाइट डोमिनेशन यानी रात्रि गश्त शुरू की जा रही है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कल देर रात जालंधर, अमृतसर और कई अन्य स्थानों पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब पाकिस्तान की ISI जैसी बाहरी एजेंसियों के शांति और सद्भाव बाधित करने के प्रयासों के प्रति संवेदनशील है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा संगठनों के संघ सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा प्रशासकों की सक्रिय सहभागिता इस आयोजन को और अधिक प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ये सम्मेलन स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और नवाचार को आगे बढ़ाने में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए 1500 से अधिक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को एक मंच प्रदान करता है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज श्रीनिवासपुरी क्षेत्र में नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां नाले पूरी तरह भर चुके हैं, जो पिछली सरकार की लापरवाही है, जिससे यहाँ भारी जलभराव होता रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी नालों की मानसून से पहले सफाई हो जाए, इसलिए सरकार के मंत्री रोज कहीं ना कहीं जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। श्री वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक हफ्ते में वर्क ऑर्डर जारी कर सफाई शुरू की जाए और हर स्टेप की वीडियो रिकॉर्डिंग हो।
देखिए, मानसून से पहले सारे नाले साफ हो, सभी नालों की डीसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में, हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर विधूड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से उसका समाधान हो जाए।
हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भारत की विविध परिवहन विरासत को प्रदर्शित और संरक्षित कर रहा है। ये म्यूजियम आकर्षक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये संग्रहालय भारतीय परिवहन में इतिहास, संस्कृति और नवाचार को प्रदर्शित करता है।
हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भारत का पहला व्यापक परिवहन संग्रहालय है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित यह म्यूजियम देश के परिवहन के इतिहास और विकास की विशद और गहन खोज प्रस्तुत करता है। 2013 में शुरू हुए इस म्यूजियम के व्यापक संग्रह को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मशीनीकृत परिवहन, रेलवे, विमानन, समुद्री, ग्रामीण और स्वदेशी परिवहन, दोपहिया वाहन, संग्रहणीय भारतीय परिवहन थीम वाले खिलौने और लोकप्रिय और आदिवासी कला शामिल है। 3500 से अधिक क्यूरेटेड वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए यह संग्रहालय न केवल वाहनों के माध्यम से बल्कि संबंधित यादगार वस्तुओं और सांस्कृतिक कलाकृतियों के माध्यम से भी भारत की परिवहन विरासत की विविध कथाओं को जीवंत करता है। यह प्रदर्शनी स्थल 1,00,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें एक पुस्तकालय और संदर्भ केंद्र, सभागार, संग्रहालय, स्मारिका दुकान, सेमिनार कक्ष और एक जलपान गृह भी है। सकलैन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
नई दिल्ली के लाल किला स्थित माधव दास पार्क में आज से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महानाट्य एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति है जो सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणादायक गाथा को जीवित करती है। उज्जैन के इस प्रसिद्ध सम्राट को उनकी वीरता, न्यायप्रियता और कला व शिक्षा के प्रति संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस प्रस्तुति का आयोजन आज से 14 अप्रैल तक किया जाएगा, जिसमें आगंतुक शाम 6 से रात 9 बजे तक शामिल हो सकते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। दिल्ली विधानसभा ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के ऑडिट पैराग्राफ की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्र सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। इस संबंध में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें श्री गुप्ता ने इस सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए हैं। इस दिशा में डॉक्टर वर्मा ने केंद्र सरकार की अतिरिक्त सचिव परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के लिए इस सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार की सचिव ने आश्वासन दिया है कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वो इस प्रणाली का उपयोग कर सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आरके पुरम क्षेत्र में पिछले 3 साल से रह रहे एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान आरोपी वैध भारतीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके बाद उसने ये स्वीकार किया कि वो लगभग 3 वर्ष पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते की समय सीमा पूरी करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कल नई दिल्ली में 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार समझौते दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होने चाहिए। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार को नया आकार देने में विशेष रूप से अमरीका जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ भारत के संभावित अवसरों का भी उल्लेख किया।
भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने इसमें आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु नियमों से जुड़े गैर व्यापार मुद्दों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो पारस्परिक विश्वास और निष्पक्षता को महत्व देते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
श्री गोयल ने भारत के व्यापार निर्णयों पर बाहरी दबाव के बारे में चिंताओं का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं है और भारत का ऐसे अवसर की स्थिति में होना अपने आप में बहुत रोमांचक है। उन्होंने कहा कि भारत का मजबूत घरेलू बाजार और आकांक्षी युवा भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।
देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगले 2 से 2.5 दशक में भारत 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के सहयोग से 8 गुना बढ़ेगा। चीन के मामले में श्री गोयल ने कहा कि भारत सदैव अपने हित सर्वोपरि रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत कम है। श्री गोयल ने कहा कि भारत के प्रयास उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण पर केंद्रित है, जो ईमानदार व्यापारिक प्रथाओं का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल न होने का भारत का निर्णय वर्तमान वैश्विक रुझानों से सही साबित हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा संगठनों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुईं। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज श्रीनिवासपुरी क्षेत्र में नालों का निरीक्षण किया और दिल्ली पुलिस ने आरके पुरम क्षेत्र में पिछले 3 साल से रह रहे एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।